मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 6 नवंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एक सूचना मैं आपको सबसे पहले दे दूं और सूचना यह है कि मेरी जो 15 दिन की क्लासेज है हमारी एकेडमी की होती है वो पूरी हो चुकी है और कल से जो आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनेंगे वह पूरी तरह से इससे 15 दिन के पहले के पैटर्न पर आधारित होगा, यानी कि जिसमें हम रेडियो न्यूज की बात करेंगे, दूरदर्शन के समाचार की बात करेंगे और भी जो दूसरी अगर महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी बात करेंगे, अखबारों की बात करेंगे, एडिटोरियल कमेंट की, मुख्य विषय की और जो कुछ भी हम लोग अभी तक बातें करते रहे हैं वो सारी बातें बिल्कुल उसी पैटर्न पर दोहराई जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए जो कह लीजिए कि वर्तमान का जो पैटर्न चल रहा है, पिछले 10 लेक्चर लगभग उसी पैटर्न पर आधारित है, उसका आज जो अंतिम दिन है उसके लिए मैंने विषय चुना है सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी। अभी किस बीच में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका भी तैयार हो गया है कि भारत को ठीक है उसका स्थायी सदस्य बना दिया जाए, लेकिन उसमें उसने एक बात कही है कि वो वीटो की मांग न करे, वीटो अधिकार की मांग न करे। मित्रों, सच पूछे तो जो भारत सुरक्षा परिषद में जो अपनी दावेदारी कर रहा है उसमें कहीं न कहीं वीटो की भी बात शामिल है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो 5 देश हैं, नाम आपको मालूम है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये जो 5 देश हैं इनके पास वीटो के पावर हैं। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति किसी भी प्रस्ताव पर असहमत हो जाता है तो फिर वो प्रस्ताव ही गिर जाता है, फिर चाहे बाकी सारे के सारे राष्ट्र एक तरफ क्यों न हो। तो मित्रों, खैर चलिए, वो एक अलग बात है। तो इसी संदर्भ में मुझे लगा कि सुरक्षा परिषद में जो भारत की दावेदारी है इस पर बात की जानी चाहिए और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए मित्रों, कुछ जो भी हम लोगों के पास वक्त है उस वक्त के फ्रेम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। थोड़े से हम बैकग्राउंड पर जाएं, क्योंकि बैकग्राउंड को जानने के बाद फिर आपको जो दावेदारी है वो एक अलग तरीके से दिखाई देगी। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी काफी तबाही हुई थी और पूरी दुनिया एक तरीके से चिंतित हो गई थी, तो उसके बाद ही लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही ये लीग ऑफ नेशन ही आज का संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान स्वरूप है, आप कह सकते हैं, राइट। इसके बाद 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया 1939 में, तो इसी बीच में 1941 में अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, 3 देश, ध्यान रखिएगा, तब आपको पता लगेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो 5 देश जिनके पास वीटो पावर है ये क्यों है ना। तो अब आप देखिए कि जो शुरुआत ही इसकी हो रही है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, ये 3 देश हैं, इन लोगों ने मिलकर के एक अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। अटलांटिक चार्टर, उसे आप लीग ऑफ नेशन का थोड़ा सा और अगला रूप कह सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलेगा। तो ये 3 देश शुरू में हो गए। और वैसे भी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 शक्तियां थी, आप देख रहे हैं, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें 3 शामिल थे और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली जैसे फासिस्ट पावर्स थी जो पराजित हुई थी। तो जो जीतने वाले देश थे तो स्वाभाविक रूप से उनमें जो बड़े राष्ट्र थे, जो महत्वपूर्ण राष्ट्र थे, उन्होंने अपना संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया और उसके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी बने और साथ ही साथ वीटो पावर भी ले लिया। फिर आप जानते हैं फ्रेंड्स के अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो गया तो 24 अक्टूबर 1945 को बकायदे यूएनओ की स्थापना हुई और उसके 6 दिन बाद ही भारत इसका सदस्य बन गया, याद रखिए। क्योंकि जब हम भारत की दावेदारी की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भारत जो पुराने सदस्य रहे उनमें से एक है। जब ये बना था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उस समय इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 51 थी और उस समय सोच करके देखिए कि जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 51 में 11, यानी कि लगभग 20-22% हो गया ये सदस्यों की संख्या थी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में। इसके बाद फिर थोड़ा सा इसे बढ़ाया गया 1960 में, यानी कि 15 सालों के बाद, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 113 हो गई, तो जो सुरक्षा परिषद में है उसके भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुत थोड़ी, और वो 4, यानी कि टोटल कर दी गई 15। आप देखिए कि जो टोटल राष्ट्रों की जो संख्या है वो डबल से भी ज्यादा हो रही है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सिर्फ 4 की वृद्धि की गई, 11 को बढ़ा करके 15 कर दिया गया। और आज फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 190 से ऊपर हो गई है, 195 के आसपास हो गई है, और संख्या सुरक्षा परिषद की ज्यों की त्यों 15 ही बनी हुई है। तो ये खासकर आंकड़े आपके समझ में आ गए होंगे, राइट। अब आप देखिए कि अब दूसरी बातें क्या हैं, आइए हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बन गया, फिर कोल्ड वार चलता रहा, और 1990 के बाद आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव आया है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। केवल यही नहीं हुआ, रूस बिखर गया, रूस एक सुपर पावर हुआ करता था अमेरिका को चुनौती देने वाला, वो बिखर गया। जब वो बिखर गया तो पूरी की पूरी दुनिया कही जाती एक ध्रुवीय बन गई, यानी कि अमेरिका का प्रभुत्व हो गया, जबरदस्त रूप से प्रभुत्व हो गया। जो बदलाव देखे कि पूरी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, चाइना इस बीच में महाशक्ति के रूप में उभरा, धीरे धीरे करके चाइना एक सुपर पावर बनने लगा। फिर आप एक देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो उपनिवेश के गुलाम थे, उपनिवेशवादी सत्ता के गुलाम थे, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लोग थे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भी थे, तो इनका भी विकास होना शुरू हुआ। देखिए उस समय तो वो दबे हुए थे, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो ये सब के सब शोषित राष्ट्र थे, उपनिवेशवादी सत्ता के तहत अधीन थे, आजाद हुए, धीरे धीरे इन्होंने विकास करना शुरू किया। अब जैसे भारत को ही देख लीजिए, तो भारत अब 7वीं-8वीं महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, उस समय तो उसकी कोई आवाज वैसी नहीं थी। और भी दूसरे राष्ट्र बहुत पावरफुल होकर के उभर गए हैं, आर्थिक रूप से भी, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बहुत नए नए राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर उभरे। अब आप देखिए कि ये सारा कुछ बदलाव आ गया, मतलब पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस दुनिया का नेतृत्व करने वाली जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए, बहुत ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही बदलाव हुए हैं। तो अगर ये मांग की जा रही है कि भैया आप सुरक्षा परिषद में बदलाव लाइए सदस्यों की संख्या में, तो गलत नहीं है, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। आप 113 सदस्यों के अगेंस्ट में अगर 15 सदस्य थे, तो आज 190 से ऊपर हो चुके हैं, तो कुछ तो आनुपातिक सिस्टम को लेकर के चलिए। जो नए नए राष्ट्र बने हुए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं, जो नए राष्ट्र पावरफुल हुए हैं, जिनका वर्ल्ड अफेयर में कंट्रीब्यूशन रहा है, आप उन्हें कहीं तो स्थान दीजिए। और अगर आप नहीं दे रहे, तो देखिए सीधे सीधे ये लग रहा है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, हथिया लिया है, और वो उसे बिल्कुल अपने ही कमांड में रखना चाह रहे हैं। और जब आप उसे अपने ही कमांड में रखेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि फिर उसकी विश्वसनीयता क्या रहेगी, क्योंकि आप अगर विश्व संस्था है तो आप उसे विश्व का प्रतिनिधि बनाइए, और प्रतिनिधि बनाने के लिए आपको उसी तरह की प्रणाली अपनानी पड़ेगी जो डेमोक्रेसी में होती है। तो आप अगर सच रूप में देखिएगा, तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरा फॉर्मेट है, खासकर सुरक्षा परिषद की वजह से, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। 5 देशों का आधिपत्य है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। इसीलिए देखिए कि मैं यहां पर अभी सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी की बात कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल टोटल ही सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग होती है। और इस बार तो जो 72वीं महासभा जब हुई की बैठक हुई थी, तो उसमें तो बहुत जोर शोर से मांग की जाने लगी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आप सुधार कीजिए, और अगर इसमें आवश्यक सुधार नहीं हुए तो लोग फिर क्या है, उसकी विश्वसनीयता कम होगी और उसकी बातों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, फिर संस्था की वक्त क्या रह जाएगी। अगर वो केवल विकसित राष्ट्रों की या अमेरिका यूरोप के देशों के ही हितों को साधने वाली संस्था बन जाएगी, तो लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे, फिर संस्था अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि जब भारत, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, कि भारत जब अपनी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की दावेदारी की बात करता है, तो उसके पास तर्क क्या है। डेफिनेटली आप जब किसी चीज की दावेदारी रखेंगे, तो आपको कुछ फैक्ट देने पड़ेंगे कि हमारे पास ये है, इसीलिए हम इसके लायक हैं और हमें ये चीज दी जानी चाहिए। तो भारत क्या कहता है, राइट, आइए इसे हम बिंदुवार देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह जो मैं आपको बता चुका हूं कि आजादी के बाद से भारत ने काफी तरक्की की है और आज विश्व की सातवीं, आठवीं, नौवीं आर्थिक शक्ति है। और बकायदे जो अर्थशास्त्री हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, वो इस बात की भविष्यवाणी भी करते हैं कि ये आगे आने वाली एक आर्थिक महाशक्ति होगी, राइट? तो अगर आर्थिक महाशक्ति है और जो वैश्वीकरण का आधार है वो अर्थशास्त्र है, तो भारत की भी दावेदारी बनती है, राइट? दूसरी बात देखिए कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में जनसंख्या बहुत ज्यादा मायने रखती है। भारत में 16% आबादी वर्ल्ड की रह रही है, विश्व की 16% आबादी। और इस तरह से अगर आप भारत को प्रतिनिधित्व देते हैं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के रूप में, तो आप विश्व के 16% लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी का राष्ट्र होने के कारण बिल्कुल उसकी यह दावेदारी बनती है कि आप उसे, उसके शक्ति को, उसके महत्व को स्वीकार करें। क्योंकि अगर भारत को महत्व मिलता है तो डेफिनेटली आप सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड को महत्व दे रहे हैं। क्योंकि जब हम विश्व स्तर पर सोचेंगे तो हर व्यक्ति विश्व का नागरिक है। राष्ट्र के स्तर पर हम सोचेंगे तो ठीक है, कोई भारत का नागरिक है, कोई इंग्लैंड का नागरिक है, कोई ब्राजील का नागरिक है। इसके बाद देखिए कि वर्ल्ड, जब हम वर्ल्ड अफेयर की बात करते हैं, है ना, तो बहुत जरूरी है कि वैश्विक मामलों में आपका क्या रोल रहा है। मतलब जो वर्ल्ड अफेयर्स होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपदा आ गई तो कौन सा देश क्या कर रहा है, भारत उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि विश्व शांति मिशन भेजे जाते हैं, शांति मिशन कहीं कहीं भेजे जाते हैं ना, पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। अगर कहीं की स्थिति बहुत खराब है तो वहां पर एक सेना भेजी जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, लेकिन वो सेना एक ही देश की नहीं होती है। वो अक्सर देखा, कोशिश की जाती है कि उसमें कई देशों की सेनाएं हों, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र के संघ की तरफ से भेजी गई है। तो भारत को ऐसे पीस कीपिंग फोर्स के तहत बहुत बार जाने का मौका मिला है। भारत को मतलब ऑलमोस्ट शामिल किया ही जाता है। और लगभग लगभग अब तक करीब करीब आप समझिए कि 50 शांति मिशन में भारत जा चुका है, 50 शांति मिशन में। और लगभग लगभग उसके 160 जो सैनिक हैं इस शांति मिशन के तहत मारे भी गए हैं, शहीद हुए हैं। तो भारत वर्ल्ड अफेयर्स में भी अपना बकायदे शांति, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य तो शांति की स्थापना ही है, उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। और इसके साथ ही साथ देखिए कि भारत ने लगातार देशों की आजादी को समर्थन दिया है, अफ्रीका वगैरह की आजादी को भारत ने लगातार समर्थन दिया है। और जो शांति की बात है तो वो तो हमारी विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ ही है, विश्व शांति। और भारत ने करके भी दिखाया। देखिए, दो चीजें तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। पहला तो ये कि भारत ने कभी भी अपनी तरफ से किसी भी राष्ट्र पर अटैक नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे जो युद्ध हुए हैं तो अटैक उनकी तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से तो वो रक्षात्मक कार्यवाही थी। भारत ने अपनी तरफ से किसी भी राष्ट्र पर अटैक नहीं किया है। फिर शांति में आप देखिए कि जो भारत का परमाणु जो कार्यक्रम है, भारत साफ साफ कहता है कि हम ये हथियारों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, हम तो ये शांति और विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और भारत ने भले ही परमाणु परीक्षण किए हैं लेकिन कभी भी उसने इसका गलत उपयोग नहीं किया है। तो यह भी बता रहा है कि भारत किस तरीके से शांति का, विश्व शांति का एक जबरदस्त समर्थक है। और सच पूछिए तो भारत की जो इमेज है दुनिया की निगाह में वो इसी तरह की है। भारत की इमेज इस रूप में बहुत अच्छी है। इसके बाद आप एक और भी देखिए रेफरेंस की, जो जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। 1945 के बाद ही, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो उसके कुछ सालों के बाद जो देश आजाद हुए थे उनको लगा कि भाई अब हम क्या करें, किधर शामिल हों। पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे का रशिया कर रहा था। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, हमको तो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, हम दोनों गुट से अलग रहेंगे। तो एक संगठन बनाया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन उसका नाम दिया गया। भारत उसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। और चूंकि भारत उसका सबसे बड़ा राष्ट्र था आबादी की दृष्टि से भी और क्षमता की दृष्टि से भी, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही लंबे समय तक भारत, यूं कह लीजिए कि भले ही उसका अध्यक्ष न हो, अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं, लेकिन यह जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका एक तरह से कह लीजिए अघोषित नेता ही रहा है। या आप यूं कह लीजिए कि जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जिसे हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, उनका अघोषित नेता रहा है। उनके जो मामले रहे हैं, उनके जो हित रहे हैं, उनको विश्व मंच पर लगातार उठाता रहा है। और खासकर वैश्वीकरण के बाद आप देखिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो होता है या वर्ल्ड बैंक जो दबाव डालते हैं इन छोटे देशों पर, गरीब देशों पर, कि वो उनकी शर्तों को माने, तो भारत ही सामने आकर के उन सबका विरोध करता है, हितों की रक्षा करता है। मतलब भारत अपने हितों की तो रक्षा करता ही है, साथ ही साथ वो इन छोटे देशों की भी रक्षा कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे देशों की है और भारत अगर उसका नेता है, वो लोग स्वीकार भी करते हैं, जो छोटे राष्ट्र है इस बात को स्वीकार भी करते हैं, नेता के रूप में तो नहीं लेकिन अपने हित रक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर फिर से भारत की एक दावेदारी बनती है कि नहीं हमको सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। फिर मित्रों और भी एक दो छोटी छोटी दूसरी बातें भी हो जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को ले लीजिए, तो भारत के सैनिक भेजे गए थे जिसमें लगभग कहा जाता है कि 14 लाख सैनिक भारत के से भेजे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लेने के लिए, है ना। लीग ऑफ नेशन की हमने बात की तो समझा जा सकता है कि भारत का रोल कितना बड़ा होता है। फिर जो वर्ल्ड लेवल के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बकायदे भारत भाग लेता है, भारत एक ये भी दावेदारी करता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म और संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, तो जहां इतने सारे लोग रह रहे हों सब धर्म और संस्कृति के लोग, तो बट नेचुरल है कि उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक बात वो ये भी कहता है कि हमारे पास बहुत बड़ा सैन्य आधार है, भारत की जो आर्म का जो मिलिट्री फोर्स है वो काफी बड़ा है, मतलब यह है कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है, तो हमारे पास उसका सैन्य आधार है। तो मित्रों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भारत हमेशा अपनी तरफ से प्रस्तुत करता है और बहुत ही वैलिड पॉइंट है, आप देखिए कि बहुत ही वजनदार पॉइंट है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि भारत के इन दावों के बावजूद उस दिक्कत कहां आ रही है, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें चार पांच पॉइंट है मित्रों, स्पेशली चार पांच पॉइंट है, बस वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिए, तो इससे आपको समीक्षा करने में, इसकी इवेलुएट करने में मदद मिलेगी। पहला तो यह है कि चीन स्वीकार नहीं करता, भारत और चीन में जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वो आप जानते हैं, और वो सुरक्षा परिषद का वीटो पावर वाला देश है। बहुत जरूरी है कि सुरक्षा परिषद के पांचों जिनके पास वीटो पावर है वो एग्री करें, तो चीन हमेशा विरोध करेगा, पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा। कुछ राष्ट्र इसलिए भी भारत का विरोध करते हैं कि नहीं, भारत ने अभी भी परमाणु जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसके पास परमाणु अस्त्र है, तो इस दृष्टि से वो बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसके पास परमाणु शक्ति है तो उसे सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए, ये भी लोग बातें करते हैं। फिर एक बात और भी कही जाती है, जैसे देखिए कि आप अगर महाद्वीप के हिसाब से हम लें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से तो अमेरिका हो गया, यूरोप महाद्वीप से तो तीन तीन देश हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, एशिया से चीन हो गया, तो कहते हैं कि दो महाद्वीप ऐसे हैं जिनका अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है, एक अफ्रीका महाद्वीप और दूसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो कहते हैं कि जो स्थायी सदस्यता जो दी जाए वो फिर इन दो महाद्वीपों को दी जाए, ताकि कम से कम यूएनओ में सभी जो कॉन्टिनेंट है उनका प्रतिनिधित्व तो हो जाए। अगर आप भारत को दे देंगे तो पहले से चीन है ही है एशिया महाद्वीप से, और आप उसमें भारत को भी दे देंगे तो उससे सही मायने में प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था नहीं वो बन पाएगी। तो दोस्तों ये चार पांच पॉइंट हैं जो इसके विरोध में कहे जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड बताते हुए दोनों ही पक्ष आपके सामने रखे हैं, पक्ष में भी भारत अपनी तरफ से क्या दावेदारी प्रस्तुत करता है और विपक्ष में भी कि लोग फिर क्या इसका काट देते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इन पॉइंट्स को जानने के बाद सुरक्षा परिषद के बारे में जो भारत की दावेदारी है वो आपके दिमाग में काफी कुछ स्पष्ट हो गई होगी। तो मित्रों अब एक फिर से मैं अंतिम सूचना दे दूं कि कल से जो हमारा डेली ऑडियो लेक्चर का जो पैटर्न होगा वो पहले की तरह ही होगा, जिसमें हम करंट इश्यूज को लेकर के बातें करेंगे। तो अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।